श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 9 जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वह ब्राह्मण अंगीरा गोत्र से संबंधित था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, विनम्र, पंडित तथा किसी से न ईर्ष्या करने वाला था। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसी के समान योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए, जिनमें से लड़का सर्वोच्च भक्त तथा राज ऋषियों में अग्रणी भरत महाराज के नाम से विख्यात हुआ। तो यह कथा है उसके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। भगवत कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से, जो भक्त नहीं थे, अत्यंत भयभीत थे। वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुनः पतच्युत न हो जाएं। फलतः वे जनता के समक्ष उन्मत्त, पागल, जड़, अंधे तथा बहरे के रूप में प्रकट होते रहे, जिससे दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा न करें। इस प्रकार उन्होंने कुसंगति से अपने को बचाए रखा। वे अपने अंतःकरण में सदा भगवान के चरण कमल का ध्यान धरते और उनके गुणों का जप करते रहते, जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचाए रखा। ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत महाराज के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था। उससे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोच कर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की शिक्षा दी। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मूर्ख जड़ की भांति आचरण करते। वे ऐसा आचरण इसलिए करते जिससे उनके पिता यह समझे कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं, और इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देना बंद कर दें। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता, किंतु वे उन्हें उसके पहले ही धो लेते, तो भी उनके पिता उन्हें बसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उसे ओंकार तथा व्याहृति के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का यत्न किया, किंतु 4 मास बीत जाने पर भी वे उसे सिखाने में सफल न हो सके। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता, अतः वह उससे अत्यधिक अनुरक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाने प्रारंभ किए, जिनमें वैदिक अनुष्ठान, शौच, वेदा अध्ययन, कर्मकांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित थे। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरकस प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था, और वह यह भूल ही गया था कि एक दिन उसे मरना है, किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चों, एक लड़का तथा एक लड़की को अपनी बड़ी सौत को सौंप कर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पतिलोक चली गई। पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत के 900 भाइयों ने उसे जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उसको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। जड़ भरत के ये भाई तीनों वेदों, ऋग, साम तथा यजुर्वेद में पारंगत थे, जो सकाम कर्म को अत्यधिक प्रोत्साहन देते हैं, किंतु वे नमो भाई ईश्वर की भक्तिमय सेवा से तनिक भी परिचित न थे। फलस्वरूप वे जड़ भरत की सिद्ध अवस्था को नहीं समझ सके। नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होते हैं। अंतर इतना ही है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के केवल 2। ऐसे 2 पैर वाले पाश्विक पुरुष जड़ भरत को पागल, मंद बुद्धि, बहरा तथा गूंगा कहते थे। वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते और जड़ भरत बहरे, अंधे या जड़ पागल की भांति आचरण करता। न तो वह कभी प्रतिवाद करता, न ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करता कि वह ऐसा नहीं है। यदि कोई उससे कुछ कराना चाहता तो वह उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता। उसे भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वह थोड़ा हो, स्वादु, बासी या अस्वादु, उसे ग्रहण करता और खाता। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाता था, क्योंकि वह पहले से उस देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो गया था, जिसके वशीभूत होकर स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन किया जाता है। वह भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण था, फलतः देहात्मक बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से सर्वथा अप्रभावित रहता था, वास्तव में उसका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उसके अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट थे। उसे न तो सर्दी गर्मी या भयार वर्षा की परवाह थी और न ही कभी वह अपने शरीर को ढकता था। वह जमीन पर लेटा रहता, वह अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाता न ही कभी स्नान करता था। शरीर मलिन होने के कारण उसका ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उसने केवल एक गंदा कौपीन और एक यज्ञोपवीत पहन रखा था जो काला पड़ गया था। यह जानते हुए भी कि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, लोग उसे ब्रह्म बंधु तथा अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर वह इधर उधर घूमता रहता था। जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करता था। उसके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाकर उसे कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु उसे खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात न थी। उसे यह ज्ञात न था कि कहां मिट्टी ढाली जाए अथवा कहां भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा जाए। उसके भाई उसे टूटे चावल, कन्ना, खली, दान की भूसी, गुना अनाज तथा रसोई के बर्तनों की जली हुई खुरचन दिया करते थे, किंतु वह इन सबको प्रसन्नता पूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेता था। उसे किसी प्रकार की शिकायत न रहती और वह इन सब चीजों को प्रसन्नता पूर्वक खा लेता था। इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार जो शूद्र कुल का था किसी पशु तुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा और सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने के लिए आज्ञा दी। वे विभिन्न दिशाओं में दौड़े, किंतु उसे ढूंढ न सके। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे जहां उन्होंने अंगीरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़ भरत को देखा जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली सुअरों से खेत की रखवाली कर रहा था। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों से युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उसे बलि के लिए अत्युत्तम पाया, अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में ले आए। इसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पशु के अनुकूल आभूषणों से अलंकृत किया, उसके शरीर पर सुगंधित लेप किया तथा तिलक, चंदन एवं हार से सुसज्जित किया। उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे उसे देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्व गीत, स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात जड़ भरत को मूर्ति के समक्ष बैठा दिया। उस समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए नर पशु जड़ भरत का रक्त आसव चढ़ाने के लिए तत्पर था। अतः उसने अत्यंत भयावनी तथा पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़ भरत को मारने के लिए उसे उठाया। जिन चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमो गुणों से आभद्ध थे। वे धनवान बनने की कामना से ओतप्रोत थे। अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया, यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने के लिए उद्यत थे। द्वेष वश वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसीलिए वे जड़ भरत को मारने का दुस्साहस कर सके। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, वे किसी के भी शत्रु न थे और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते तो भी उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत को वध किए जाने का कोई औचित्य न था। अतः यह भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। वे तुरंत समझ गई कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं। अतः सहसा मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया और साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर एवं असहय तेज से जल रहा था। किए गए अत्याचारों को न सहन कर सकने के कारण क्रुद्ध देवी काली ने अपनी आंखें चमकाई और उनके कराल वक्र दांत दाणे दिखाए। उनकी लाल लाल आंखें दहकने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावना रूप धारण कर लिया, मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत हो। वे बलि वेदी से तेजी से कूदी और तुरंत ही उन चोर उचक्कों के सिर उसी तलवार से काट लिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। फिर छिन्न सिरों वाले उन उचक्कों चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को पीने लगी, मानो मदीरा आसव पान कर रही हो। दरअसल उन्होंने अपने गणों के सहित जिनमें डाइने तथा चुड़ेलें थी उस आसव का पान किया और फिर प्रमत्त होकर वे सब उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगी। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे सदैव उपर्युक्त विधि से दंडित होना पड़ता है। तब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे विष्णु दत्त, आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले, अजेय हृदय ग्रंथि से मुक्त, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुरक्त तथा दूसरों का अहित न सोचने वाले व्यक्ति, चक्रधारी तथा असुरों के लिए परम काल एवं भक्तों के रक्षक श्री भगवान द्वारा सदैव संरक्षित होते हैं। भक्त सदैव भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं। फलतः सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अशुद्ध रहते हैं। यह उनके लिए तनिक भी विस्मयकारी नहीं होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र नामक नौवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।